नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो वैष्णवी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट वैष्णवी। And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. So there is a lot to talk about, Vaishnavi, and all this over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Defense Minister Rajnath Singh unveils first Tejas LCA Mark 1A fighter jet from Hindustan Aeronautics' new Nashik production line. Says a flight of the jet represents country's flight of self-reliance in the defense sector.
गुजरात सरकार ने नए मंत्रिमंडल का गठन किया। श्री हर्ष सांघवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
210 नक्सलाइट सरेंडर इन छत्तीसगढ़ जगदलपुर।
सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट मामले पर गंभीरता जताई। केंद्र और सीबीआई से मांगा जवाब।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू अटेंड नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग।
और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का सामना फ्रांस के एलेक्स लेनियर से होगा।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Adi Karma Yogi Abhiyan. Well, Vaishnavi, the government has declared 15th November 2024 to 15th of the next month as Janjatiya Gaurav Varsh as part of this landmark celebration. The Minister of Tribal Affairs launched the Adi Karma Yogi Abhiyan, envisaged as the world's largest tribal grassroots leadership program, reaching 11 crore citizens across 1 lakh villages and tolas in 30 states UTs. And the Adi Karma Yogi Abhiyan is a national movement to build a decentralized tribal leadership and governance ecosystem.
अभिषेक, इस अभियान का उद्देश्य है आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, उत्तरदायी शासन को सुदृढ़ बनाना और देश भर में स्थानीय नेतृत्व के अवसर पैदा करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू किया गया ये अभियान सेवा, संकल्प और समर्पण पर जोर देता है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मार्गदर्शक सिद्धांत को दर्शाता है। ये पहल जनजातीय गौरव वर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और 2047 तक विकसित भारत के विजन में योगदान दे रहा है।
Yes, and like I was saying, Vaishnavi, the government has declared 15th November 2024 to 15th November 2025 as the Janjatiya Gaurav Varsh. And the objectives of the Adi Karma Yogi Abhiyan includes promoting responsive people-centric governance at village and community levels.
बल्कि सिर्फ ग्रामीण पे ही नहीं, राज्य से लेकर जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक बहुविभागीय शासन, प्रयोगशाला व कार्यशालाएं आयोजित करना और एक ऐसे विकास योजना का सह निर्माण करना जहां आदिवासी समुदाय और सरकारी अधिकारी संयुक्त रूप से विजन 2030 के तहत 1 लाख आदिवासी गांव तैयार करें, जिसमें विस्तृत कार्य योजनाएं और निवेश रणनीतियां शामिल हो। इसके अलावा जमीनी स्तर पर विकास पहलों को लागू करने के लिए 550 जिलों और 30 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 20 लाख आदिवासी नेताओं का एक नेटवर्क बनाकर उन्हें प्रशिक्षित और संगठित करना होगा। इसके साथ ही 1 लाख आदि सेवा केंद्र स्थापित करना और उसमें सभी प्रकार की सुविधा प्रदान करना है।
Yes, and also promote last mile convergence and effective service delivery, capture and amplify voices of tribal communities.
आदि कर्म योगी अभियान के अंतर्गत नेतृत्व के 3 स्तंभ हैं। पहला है स्वयं आदि कर्मयोगी, दूसरा है सरकारी अधिकारी और तीसरा राज्य, जिला, ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर शासन के प्रमुख संचालक। ये 3 स्तंभ योजनाओं के अभिसरण, संस्थागत समर्थन और उत्तरदायी वितरण को सुनिश्चित करते हैं।
And Adi Sehayogi, youth teachers, doctors, motivated service providers, and educated tribal youth who bridge access to education, health awareness, and innovation.
श्रोताओं, आदि साथी जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं और जनजातीय बुजुर्ग जो जमीनी स्तर के परिवर्तनकर्ता और सामुदायिक सूत्रधार हैं, जो लोगों को संगठित करते हैं तथा परंपराओं को संरक्षण भी करते हैं.
Also inaugurating the Adi Karma Yogi Abhiyan on 17 September this year at Dhar, Madhya Pradesh, PM Modi said this campaign will directly connect tribal communities with government schemes, enabling them to actively participate in shaping the development of the villages.
हमने मध्य प्रदेश के धार में एक बहुत बड़ा PM मित्र पार्क शुरू किया है. गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है. उनकी प्रेरणा से ही हमने PM जनमन योजना शुरू की है. इसके तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़े समाज को प्राथमिकता दी जा रही है. इसका लाभ 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों तक पहुंचेगा. आज देश में सैकड़ों एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय खोले जा रहे हैं. हमारे आदिवासी भाई बहन हजारों वर्षों से जंगल के संसाधनों का इस्तेमाल करते आए. ये वन संसाधन उनकी प्रगति का जरिया बने, इसके लिए हमने वन धन योजना शुरू. इसका परिणाम है आज देश में वन उपज में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है. साथियों, आदिवासी समाज को स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है.
ये अभियान प्रमुख सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर आधारित है, जैसे धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान और राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन.
Yes, and the Adi Karma Yogi अभियान, grounded in community participation, youth leadership and responsive governance, empowers tribal citizens as co-creators of India's development journey. It lays the foundation for an inclusive, resilient and prosperous nation aligned with the vision of Viksit Bharat at 2047. And President Draupadi Murmu is attending the National Conclave on the Adi Karma Yogi Abhiyan in New Delhi today. And the Minister of Tribal Affairs is organizing the conclave under the vision of Viksit Bharat as enunciated by Prime Minister Narendra Modi.
ये सम्मेलन प्रधानमंत्री जन जन अभियान और धरती आभा अभियान के संयोजन में आयोजित किया जा रहा है. एक रिपोर्ट.
The conclave will focus on Tribal Village Vision 2030, from ideas to implementation. A key highlight of the event will be conceptualizing Tribal Village Vision 2030, aimed at finalizing policy inputs, implementation frameworks, and project execution strategies emerging from nationwide consultations with tribal communities based on over 50,000 village action plans. During the conclave, 5 thematic groups will deliberate on priority sectors including education and skill development, health and nutrition, livelihood and entrepreneurship, infrastructure and governance, and institutional strengthening. With Pallavi Parmar, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम ने कहा है कि आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य देश के 1 लाख आदिवासी गांवों में 20 लाख प्रशिक्षित परिवर्तन नेताओं का एक कैडर तैयार करना है. उन्होंने आज आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही.
And the conclave aims to focus on advancing tribal development in education and skill development, health and nutrition, livelihood and entrepreneurship and infrastructure. And speaking at the event, Minister of State for Tribal Affairs, Durga Das Uike, said that Tribal Village Vision 2030 action plan emerges from over 50,000 village action plans and integrates flagship schemes like PM Janman and Dharti Abha Abhiyan 2.0. And on the 2nd of October 2025, tribal villages across India adopted Tribal Village Vision 2030 declaration via special Gram Sabhas, aligning local goals with Viksit Bharat at 2047.
जनजातीय ग्राम विजन 2030 का उद्देश्य 50,000 से अधिक ग्राम कार्य योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के साथ एक राष्ट्रव्यापी परामर्श से उभरने वाली नीतिगत जानकारी, कार्यान्वयन रूपरेखा और परियोजना निष्पादन रणनीतियों को अंतिम रूप देना है. इसमें 5 विषयगत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण, आजीविका एवं उद्यमिता, शासन एवं संस्था का सुदृढ़ीकरण पर विचार विमर्श किया जाएगा.
Yes, and Adi Seva Kendras established as a single window citizen service centers, AI-enabled Adi Vani app for real-time multilingual communication, and to date, 56,000 plus Tribal Village Vision 2030 action plans have been formulated, and 53,000 Adi Seva Kendras have been established as policy guidance tool and institution mechanism, respectively, with a vision to empower 11.5 crore tribal citizens through involvement of 10 lakh plus Adi Sathis and Adi Sahyogis across 30 states and UTs.
अभिषेक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तरदायी और समावेशी शासन को संस्थागत बनाने के एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। जनजातीय ग्राम विजन 2030 को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय एक नागरिक केंद्रित आंदोलन चला रहा है जो ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक आदिवासी परिवार और प्रत्येक गांव विकसित भारत 2047 की ओर भारत की यात्रा में एक सक्रिय भागीदार बने।
Yes, and to wind up our discussion today, Vaishnavi, I think it's only apt if we say that from the grassroots to the nation's vision, the Adi Karma Yogi spirit lights the path to a developed, inclusive India.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और उनसे जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो सबसे पहले चलते हैं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की दर में बदलाव से उपभोक्ताओं और व्यापारियों को दोनों को ही राहत मिली है। सरकार के इस फैसले से दिवाली से पहले ही लोगों के घरों में खुशियां आ गई हैं और पूरे गुजरात ने इस फैसले का स्वागत किया है।
देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव का प्रारंभ हुआ है, जिससे ग्राहक से लेकर व्यापारियों सभी को लाभ हो रहा है। सरकार के अहम फैसलों में से एक सीमेंट और निर्माण सामग्री पर जीएसटी की दरों की कटौती भी शामिल है। इससे आवास क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही घर खरीदने वाले लोगों को लाभ होगा, क्योंकि घरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत कम हो जाएगी। इस कदम से रियल एस्टेट की मांग बढ़ने और निर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस कमी से निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस मामले में महिसागर जिले के एक लाभार्थी की प्रतिक्रिया सुनते हैं।
सरकार ने जो अभी नया जीएसटी दर लगाया है, उसमें कंस्ट्रक्शन के विषय में जो सीमेंट का रेट था आज तक 28% जीएसटी लग रहा था, वो घटा के अभी 18 हो गया है। उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी आएगी। वो घर बनाना हर एक आदमी का एक सपना होता है, जिसके कारण मध्यम वर्ग के लोग सहलाई से अपना मकान बना सके।
अहमदाबाद पूर्व लोकसभा बैठक के सांसद हसमुख पटेल ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दर में कमी से उपभोक्ताओं के पैसे बचेंगे, इससे सरकार और जनता दोनों को लाभ होगा।
एक टैक्स कटौती के हिसाब से देखे जाए तो पूरे देश में करीब करीब 2,00,000 करोड़ की बचत जनता के हाथ में आने वाली। आज पूरा देश में इतना टैक्स कटौती करने की हिम्मत इसके लिए है क्योंकि आज देश आर्थिक स्टेबल है और इसकी वजह से सरकार अपना टैक्स कम करके जनता को राहत दे सकती। इस टैक्स कटौती के हिसाब से छोटे परिवार में भी 1,000 रुपए की बचत होगी।
परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियेचा।
नागालैंड इज प्रपोज्ड दुजकु वैली एज अ स्टेट्स ऑफिशियल नॉमिनेशन अंडर द नेशनल इनिशिएटिव डेवलपमेंट ऑफ 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। The proposal was presented by Nagaland's Minister for Tourism and Higher Education, Temjen Imna Along, during the two-day National Conference of State Tourism Ministers held in Udaipur. The conference, which concluded on October 22nd, focused on developing 50 world-class tourist destinations through a national challenge initiative spearheaded by the Minister of Tourism, Government of India. We have a report from a Kohima correspondent.
Nagaland's proposal outlines a transformative development plan with an estimated cost of 250 crore rupees, aiming to establish Dzukhu Valley as a premier international ecotourism destination. The project includes the construction of an eco-friendly luxury hotel, development of tourist amenities, and enhancement of infrastructure to improve accessibility and visitors' experience while preserving the valley's pristine natural ecosystem. Speaking at the conference, Minister of Tourism and Higher Education Temjen Imna Along highlighted the valley's ecological and cultural importance, describing Dzukhu as a symbol of God's beautiful creation in Nagaland for the world to see and experience.
Is destination on world class isliye banana chahte hain kyunki agar aap purvottar ke reels ke purvottar ki tourism destination ka jitne bhi bahar ke log aate hain सबसे ज्यादा ट्रेजेक्टरी जुकोवेरी का होता है.
दिस नॉमिनेशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन नागालैंड्स एफर्ट्स टू प्रमोट इट्स नेचुरल हेरिटेज एंड पोजिशन्ड जुको वैली एज अ वर्ल्ड क्लास हब फॉर इको एंड सस्टेनेबल टूरिज्म. फॉर परिक्रमा असोन्यो फ्रॉम कोहिमा.
और अभिषेक, अभी दिवाली की रौनक पूरे देश भर में चल रही है और मतलब कितना सुंदर लगता है दीपोत्सव और हर तरफ लाइट जली रहते हैं.
वैष्णव, आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू विश ऑल आवर लिसनर्स अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड मे द फेस्टिवल ऑफ लाइट डिस्पेल ऑल द डार्कनेस इन योर लाइव्स.
जी बिल्कुल. और इसी दीपोत्सव से अगर बात करें तो अयोध्या की दीपोत्सव बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है. अयोध्या में इस बार 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव में आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक का संगम देखने को मिलेगा. 26,11,101 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही म्यूजिकल ड्रोन शो और 3D होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो रामायण की झलकियां प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को अनूठा अनुभव भी देंगे.
अयोध्या के मंडलायुक्त राजेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष 26,11,101 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है. दीपों की जगमगाहट के बीच इस बार करीब 1900 लोग एक साथ सरयू आरती करेंगे. 1100 ड्रोन आकाश में विशेष शो प्रस्तुत करेंगे जो भगवान राम के जीवन और अयोध्या की महिमा को दर्शाएगा. शो का समापन त्रेता युग से नव अयोध्या की प्रतीकात्मक झांकी के साथ होगा. वहीं 3D होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो दर्शकों के सामने वास्तविक प्रतीत होने वाली छवियों के माध्यम से अनुभव को यादगार बनाएगा. दीपोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे. 6 करोड़ की लागत से बने इस म्यूजियम में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण समेत 50 देवी देवताओं की मोम की प्रतिमाएं त्रेता युग की कथा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगी. तन्मय सोनी के साथ परिक्रमा के लिए आकाशवाणी गोरखपुर से प्रेमचंद्र गुप्ता.
GST Budget Utsav, which was announced by Prime Minister Narendra Modi and commenced on the 22nd of last month, is benefiting all sections of society. Today, our correspondent brings a report on the GST reforms that will boost the economy of Assam.
नए जीएसटी सुधार ने असम के बुनकरों, किसानों और छोटे व्यवसायों को बड़ी राहत प्रदान की है. नए कर ढांचे के तहत राज्य के पारंपरिक और क्षेत्रीय सामानों पर जीएसटी कम कर दिया गया है. इन सुधारों से चाय पर 5% जीएसटी लगने से असम की चाय उद्योग को लाभ मिला है. इससे चाय के दाम घटने के साथ ही असम की चाय देश विदेश के बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगी. इसके साथ ही पारंपरिक महत्व के उत्पाद जैसे मूंगा सिल्क और गमोसा पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इससे बुनकरों को राहत मिली है. वे अब अपने उत्पाद बेहतर दाम पर बेच पा रहे हैं और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है. पर्यटन क्षेत्र को भी इस सुधार से फायदा हुआ है. अब 7,500 रुपए तक प्रति रात के होटल कमरों पर केवल 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे असम पर्यटन के लिए और अधिक किफायती गंतव्य बन गया है. जीएसटी में इस कटौती से बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और त्योहारों के दौरान और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. शिवांग मिश्रा के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
और श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए खेल के मैदान की ओर रुख करते हैं और जानते हैं वहां की हलचल. डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला फ्रांस के एलेक्स लैनियर से होगा. ओडेंस में ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:10 से शुरू होगा. प्री क्वार्टर फाइनल में कल लक्ष्य ने एंटनसन को हराया.
And now on to some business news. Benchmark domestic equity indices, Sensex and Nifty extended the impressive run and rose around 0.5% today. The markets rebounded after a weak start and stayed in positive zone for the third straight session. The Sensex gained 485 points to close at 83,952. Similarly, Nifty advanced 125 points to settle at 25,710. In the forex market, the rupee depreciated by 15 paise to trade at 87 rupees and 97 paise a short while ago.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
On 17th October in 1940, the father of the nation, Mahatma Gandhi, had chosen Acharya Vinoba Bhave as the first Satyagrahi to start individual Satyagraha. It is said that if Mahatma Gandhi's political guru was Gopal Krishna Gokhale, then his spiritual disciple was Acharya Vinoba Bhave.
The movement of individual Satyagraha was launched by Gandhiji as a protest against the British colonial government forcing India into the Second World War without the consent of the Indian people. by May 15, 1941, 25,000 Satyagrahis had courted arrest and demonstrated the commitment of the people towards the freedom movement.
Acharya Vinoba Bhave went to jail for individual Satyagraha and the Quit India movement. During three major books, Swaraj Shastra, Sthit Pragya Darshan and Ishavasya Vrit, he was released from jail on July 9, 1945 and returned to Pavnar in Maharashtra and continued working there under directions of Gandhiji.
Independent India had seen the sacrifice of Bapu and the division of the country. Acharya Vinoba Bhave reached Delhi and started the resettlement of Mewar Muslims of Rajasthan.
The first meeting of Mahatma Gandhi and Vinoba Bhave on 7th June 1916 has its own simplicity. On that day, Vinoba reached Mahatma Gandhi's Kosharab Ashram in Ahmedabad, and when the two met for the first time, they realized that there was an eternal bond between them. This bond continued throughout Vinoba Bhave's life as he stayed true to Gandhian philosophy forever.
His most important contribution was redistribution of land among sharecroppers under Bhudan movement through a change of heart of big landowners, which was among Mahatma Gandhi's core beliefs. He also raised awareness about the negative effects of alcoholism.
Bharatiya Lokmat, Bharatiya Sanskriti, Bharatiya Hava, these three are sharab ke liye pratikul hai. Sharab mein haniya bahut hai. जहाँ तक गरीब जनता का सवाल है वहाँ तक अगर हम शराब को नहीं हटाएंगे तो गरीबी हटेगी नहीं गरीबों का अत्यंत नुकसान होगा.
With his footing firmly on ground realities, Acharya Vinoba Bhave thought about peaceful revolution of Bhutan.
Talking exclusively to All India Radio, eminent Gandhian Damayanti Pani, Secretary, Madhya Pradesh Gandhi Smarak Nidhi, Chhatarpur, talked about the philosophy of Bhudan and Acharya Vinoba Bhave's role in it.
Vinoba ji ka Bhudan yagya Vasudev Kutumb ka jivant udharan hai. Vinoba ji Bhudan yagya mein kehte hain jab samudra lang nahi sakte, akash ko baat nahi sakte, surya va chandra ko chhu nahi sakte, to prithvi bhumi ko kaise baat sakte hain? Us zameen par prithvi par rehne wale sabhi praniyon ka barabar ka haq hai. Vinoba Bhave ne 7 मार्च 1951 को सेवाग्राम आश्रम छोड़ दिया और अगले 13 वर्ष और 1 महीने में उन्होंने 43,000 मील पैदल यात्रा की. 6 अप्रैल 1964 को वे सेवाग्राम पहुंचे. देश के 5,50,000 गांव में से 1,60,000 गांवों ने ग्रामदान किया. भूदान आंदोलन को 50 लाख एकड़ जमीन मिली और उसमें से 13 लाख एकड़ जमीन वितरित कर दी गई सर्वे भूमि गोपाल की. इस तरीके से उन्होंने जय हिंद की जगह जय जगत का उद्घोष किया.
The grandson of English poet Lord Alfred Tennyson, Hallam Tennyson, who was with Acharya Vinoba during his Padyatra, says in his book The Saint on the March,
even in saints there is a tiny bit of possessiveness, pride due to the sacrifices they have made. But Vinoba never allowed any of these to affect him, and he never told anyone to emulate him.
All India Radio salutes the Padyatri saint who remained committed to Gandhian philosophy and cause of landless peasants throughout his life.
Yes, and we also remembering Frederick Francois Chopin, who passed on this day in 1849. He was a Polish composer and virtuoso pianist of the Romantic period who wrote primarily for solo piano. He has maintained worldwide renown as a leading composer of his era, whose poetic genius was based on a professional technique that was without equal in his generation. Let's listen in to a hit composition of his. Thank you.
आज हम याद कर रहे हैं राजीव तारानाथ को, जो एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और सरोद वादक थे। उनकी सरोद वादन शैली में भावनात्मक गहराई और तकनीकी कुशलता का अद्भुत समन्वय था, जिसने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई। उन्हें 1999 में पद्मश्री जैसे पुरस्कार से नवाजा गया।
Yes, and Arthur Asher Miller was born on this day in 1915. He was an American actor and writer of plays in the 20th century American theater. Among his most popular plays are All My Sons, Death of a Salesman, The Crucible, and A View from the Bridge. He wrote several screenplays, including The Misfits. The drama Death of a Salesman is considered one of the best American plays of the 20th century. And Miller was often in the public eye, particularly during the late 1940s, 1950s and early 1960s. And of course, during this time, he received a Pulitzer Prize for drama.
आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे मशहूर अभिनेत्री को, जिन्होंने अपनी अभिनय कला से भारतीय सिनेमा को न केवल रोशन किया, बल्कि समानांतर सिनेमा को एक नई दिशा दी। आज जन्मदिन है स्मिता पाटिल का। उनका कैमरे के साथ पहला परिचय 1970 के दशक में मुंबई के दूरदर्शन केंद्र में समाचार वाचिका के रूप में हुआ था, और उसके बाद उन्होंने मंथन, भूमिका और मिर्च मसाला जैसी फिल्मों में दर्शकों का दिल जीत लिया।
Yes, and Smita Patil primarily worked in Hindi and Marathi films and regarded among the greatest and finest actresses in the history of Indian cinema. She was known for her unconventional portrayal of strong and independent women. Patil appeared in over 80 films in her career that spanned over a decade and was the recipient of 2 National Film Awards, a Filmfare Award and Maharashtra State Film Award, and 2 Filmfare Awards, Marathi and Vaishnavi. In 1985, Patil received the Padma Shri, India's 4th highest civilian honor, and Patil, of course, made her film debut with Shyam Benegal's Charandas Chor. Let's listen in to a song from one of her movies.
आज बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल का जन्मदिन है। 1961 में उन्होंने अभिनय की दुनिया में एक कदम रखा और हॉलीवुड की फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया से डेब्यू किया, लेकिन जल्द ही बॉलीवुड की चहेती बन गई। फिल्मों जैसे साथी और मेरा नाम जोकर में उनकी बोल्ड भूमिकाओं ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। बाद में उन्होंने निर्देशन और प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया। फिर बाद में उनका टॉक शो रेंगव्यू विद सिमी ग्रेवाल ने बॉलीवुड हॉलीवुड के सितारों के राज खोले।
Yes, and Bill Hutz. Yes, and Bill Hudson was born on this day in 1949. He's an American musician and actor. He was a vocalist in the Hudson Brothers, a band he formed in 1965 with his 2 younger brothers, Brett and Mark. He later had a brief acting career, and he also appeared in recurring guest role on the series Doogie Howser, MD. Let's listen in to his 1976 hit track, Rendezvous. And also Anil Kumble was born on this day in 1970. He was a former Indian cricketer, captain, coach and commentator who played test and one-day international cricket for his national team over an international career of 18 years. A right-arm leg-spin bowler regarded as one of the greatest bowlers in cricket history, he took 619 wickets in test cricket.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने का।
नमस्कार।